धार्मिक विधि गढ़ सकता है। इस विचारधारा की यहां पर भी भर्त्सना की गई है। यदि कोई सचमुच धार्मिक बनना चाहता है तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में धर्म का असली अर्थ बतलाया गया है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम ना वै विदुरिषयो नपि देवा ना सिद्ध मुख्या सुर मनुष्य कुतश्च विद्याधर चरंदया स्वयंभु नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैशाखीर्वयम् द्वादशैते विज्ञानमो धर्मम भगवत्वत गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतम श्नुते एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसं धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहण आदि भी। इन श्लोकों का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के द्वारा धर्म गढ़ा नहीं जा सकता। धर्म तो भगवान की आचार संहिता है। फलस्वरूप बड़े से बड़े संत देवता या सिद्ध मुख्य भी धर्म को नहीं गढ़ सकते। तो फिर असुरों मनुष्य विद्याधरों चारणों आदि की तो बात ही क्या। धर्म के सिद्धांत परंपरा पद्धति से अवतरित होते हैं, जिनका शुभारंभ 12 महापुरुषों से होता है। ये हैं ब्रह्मा जी, महर्षि नारद, शिवजी, चारों कुमार, देवहूति पुत्र कपिल, स्वयं भुवमनु, प्रहलाद महाराज, राजा जनक, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। धर्म के सिद्धांत इन्हीं 12 पुरुषों को ज्ञात हैं। धर्म उन धार्मिक सिद्धांतों का सूचक है जिनके द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। धर्म अत्यंत गोपनीय, भौतिक प्रभाव से अकुलिशित तथा सामान्य व्यक्तियों को समझने के लिए अत्यंत कठिन होता है, किंतु यदि कोई वास्तव में धर्म को समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है। भागवत धर्म अर्थात परंपरा पद्धति द्वारा विवेचित धर्म परम धर्म है। दूसरे शब्दों में धर्म भक्ति योग के विज्ञान को बताने वाला है, जिसका शुभारंभ नवदीक्षित भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने के साथ होता है। तन नाम ग्रहण आदि भी। अतः इस कलयुग के लिए चैतन्य चरित्रामृत श्लोक 98 में संस्तुति की गई है। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन को धर्म की विधि के रूप में सारे वैदिक शास्त्रों ने स्वीकार किया है। इस चैतन्य चरित्रामृत के अगले श्लोक में, जो कि श्रीमद् भागवतम से ही है, इसकी और पुष्टि की गई है।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शरदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम ह बोलते हैं तभी गला खराब पता चलता है, क्योंकि ह जहाँ गला खराब है वहां से निकलता है ना। पवर्ग तवर्ग से दिक्कत नहीं है से प फ ब भ म ये होठों से निकलता है, त थ त थ न यहाँ है ना, तो वहाँ दिक्कत नहीं। दिक्कत जो ह बोलेंगे तो बात है। भगवान क्या सिस्टम बनाया देख लीजिए। जीवा वही है सबने, जो शब्द जहाँ से करना है ऑटोमेटिक अपने आप वहां पहुंच जाता है ना। ये भगवान की व्यवस्था है। तो श्लोक संख्या जो 97 है उसको भी पढ़ लेते हैं। भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। यह हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कहा श्लोक संख्या 18 में अवतरी चैतन्य कैल धर्म प्रचारण कली काली धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। अतएव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। और आज के श्लोक कि जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसे इस युग का शिकार तब बुद्धि सहित समझा जाना चाहिए। ये जो हरिनाम है तो सर्व भट्टाचार्य जी कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष सृष्टि है जिसे हम प्रेम संकीर्तन कहलाती है। हम सब जानते हैं कि गोलोक केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन ये प्रेम धन है और चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर आए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु आए इसी के लिए कि जो ये हरिनाम है इस कलयुग का जो धर्म है उसको प्रसारित करने के लिए। तो अगर आप पढ़ा होगा या सुना भी होगा चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं और कवि चंद गोस्वामी महाराज इसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने से पहले किसको भेजा हरिनाम को। उन अवतार लेने से पहले हरिनाम पहले भेज दिया क्योंकि हरिनाम से ही वो चुप होते थे। इसलिए जैसे वो चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए तो रोने लगते थे तो सब क्या बोलते थे हरि बोल और हरे कृष्णा महामंत्र करने लगते चुप हो जाते थे। तो सबको पता चल गया वहाँ पे पूरा मायापुर वासी नदिया निवासी को कि हरिनाम ही इनका प्रिय है। जैसे हरिनाम बोलते हैं रोना बंद हो जाता है ऐसा बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए ही इस हरिनाम को लेकर के। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं कि किस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। इसका एक कितना चमत्कारिक है भगवान का नाम शास्त्रों में बहुत प्रमाण दिया है लेकिन जो हम सब जो भक्तगण हैं हमको पता है कि हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी इसी हरिनाम के आधार पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। हम सब जानते हैं देखिए श्री प्रभुपाद जी धन लेके नहीं गए थे। धन के रूप में सिर्फ उनके पास 40-45 रुपए ही थे लेकिन जो सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास थी जो लेके गए थे वो क्या था हरिनाम प्रेम धन। ऐसे के बल पर प्रभुपाद जी गए। भगवद गीता सिंह भागतम एक हारमोनियम मृदंग करताल ये सब लेके और इसी हरिनाम से प्रभुपाद जी ने हम लोग खुद अनुभव कर रहे हैं कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के हरनाम लाए हुए इस नाम में कितनी शक्ति है कि इसे इतना बड़ा मोमेंट खड़ा हो गया। इससे बड़ा हम और उदाहरण क्या देख सकते, जो ज्वलंत जो हम देख रहे हैं उसका असर कितना है। और जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम को फैलाया ग्रुप के साथ, उसका ही असर है। आप हमारे दिल्ली मंदिर में जाएंगे तो वहां पे एक तस्वीर पेंटिंग की गई है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ग्रुप के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो वहां पे जो जंगली जानवर होते हैं, भालू, हिरण, शेर, सांप, नेवला, मोर, ये सब जानी दुश्मन है एक दूसरे के देख नहीं सकते। अगर आमना सामना होगा तो एक दूसरे खा जाएंगे, लेकिन ये जो प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से वो सब भूल गए, दुश्मनी शत्रुता भूल गए और एक साथ क्या करने लगे, नाचने लगे। इसलिए तो इसको प्रेम धन कहा गया है कि ये प्रेम धन ऐसा है कि सब में प्रेम उत्पन्न कर देता है। कैसे उत्पन्न करता है कौन बताएगा, चेतन महाप्रभु खुद बताया गया है। शीर्षाष्टकम में चेतन महाप्रभु खुद बताया चेतो दर्पण। प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हमारा हृदय और चित्त मन जो मैल छुपा हुआ है वो साफ होता है। और वो साफ करने का एक ही डिटर्जेंट है, वो क्या है, हरिनाम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्सल का घोल बनाएंगे पी जाएंगे सब साफ हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबके धुलाई करने का अलग अलग टेक्निक है। तो मन की धुलाई, हृदय की धुलाई, चित्त की धुलाई का एक ही तरीका है, क्या है, हरिनाम से। तो जब हरिनाम का हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे हृदय की जो मलिनता है वो साफ होने लगती है। और हृदय की मलिनता क्या है बताइए, आप लोग बोला करिए, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब क्या है, यही मैल है, ये तभी निकलता है। इसलिए हम देखा कि जो भक्त हरिनाम का जप करता है अशुद्ध भाव से करता है, क्योंकि जप करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई तो उसको 16 माला पूरा करना है वो खींचता चला जाता है माला, शुद्धता से कोई मतलब नहीं। एक एक शब्द का उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, बड़े ही पवित्र के साथ। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमको जल्दी 16 माला खींचना है, करना है तो जल्दी जल्दी, शब्दों का उच्चारण बहुत ही ढंग से तब असर पड़ता है। और ध्यान के कभी कभी क्या देखा है, हमारे भक्त लोग जैसे कथा होती है तो कुछ लोग पीछे कर के चांटिंग भी करते रहते। एक समय में आप एक ही काम करना चाहिए, कथा में जो आप बैठे हैं तो सिर्फ कथा सुनिए, उस समय चांटिंग नहीं करिए। कुछ लोग आपने देखा होगा वॉकिंग करते हैं है ना, और हरे कृष्ण को बात भी करते रहते है नहीं, ये भी गलत है। एक समय में आप एक ही काम करिए। आप भगवान नहीं है कि मल्टीपर्पज काम एक ही समय कर सकते हैं, इंसान ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारी चांटिंग पर जब जब करते हैं उसका असर पड़ता है। एक समय एक ही काम करें। अभी एक बार जन्माष्टमी के समय एक घटना बताता हूँ। जन्माष्टमी कितनी भीड़ होती है हम सब को अनुभव है। अब प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है कि हमारे देखे दिल्ली राजधानी में 14-15 मंदिर हैं, हर मंदिर में इतनी भीड़ कितने लोग आते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी के दिन करीब 10 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस वर्तमान में, उनकी वाइफ लोग आई थी, क्योंकि जितने मिनिस्टर्स हैं और जो नए एमपी बन के आए हैं सांसद बीजेपी के, ये लोग का लेडीजों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम रखा है कमल सखी ग्रुप। क्या नाम रखा है? कमल सखी ग्रुप। तो उसकी लीडर जेपी नड्डा की वाइफ है मल्लिका नड्डा, हमारा बड़ा अच्छा संबंध है उन लोगों से, तो वही लेके आई थी जन्माष्टमी। किसने? 10 उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ, अनुराग ठाकुर की वाइफ जो फाइनेंस मिनिस्टर है, शेफाली ठाकुर, सब आए थे। और तो एक कोई कांग्रेशन ड्यूटी तो नहीं, मैं तो पहली बार देखा था। वो जानते क्या कर रहा है? बड़ा जोर से चैंटिंग कर रहा था, जब हरे कृष्ण 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 हरे राम, और ऐसी अटपटे जगह बैठा हुआ था कि जहाँ से हम इतने बड़े लोगों को लेकर निकाल नहीं सकते। तब तो उसको हमने श्रद्धा से कहा कि आप थोड़ा सा रास्ता दे, हमको इनको लेके जाना है। तो कहे नहीं, हरे कृष्ण नहीं। हमको तुम कैसा भक्त है, चांटिंग इतना जोरदार करता है और तमीज नहीं है। देखो, वैष्णव को शिष्टाचार आना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति तहे दिल से चांटिंग करेगा, प्रभुपाद जी को फॉलो करना, उसके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी चांटिंग में ही खोट है। अब हमसे बहस कर बिना चांटिंग भी कर रहा है, इसलिए मैं उदाहरण दिया। ये बहुत गलत बात है। बाद में हटा उसके साथ कोई था, उसने कहा तो मैं आपका देख लूँ, बोलता है मैं आपका देख लूंगा। मैं अपना कार्ड दे दिया, कहीं अपना नंबर दो, अपना कार्ड ही पकड़ा दे, जो जो देखना हो देख लेना, है न, है न, है न, अभी तो रास्ता दो, है न, फिर रास्ता दिया। आज तक वो देखता ही रह गया, पता नहीं एक भी फोन भी नहीं आवे तो कार्ड दे दिया। तो ये बहुत गलत है। हमें हम अगर वैष्णोडेस में हैं, हरिनाम जब करते हैं तो बहुत आवश्यक है, और तभी हरिनाम क्या करेगा, प्रभावशाली बनेगा। ये किससे सीखल है? प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए, अमेरिका गए, वहां कितनी तकलीफ उनको झेलनी पड़ी, आप लोग सब जो कि पढ़े जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, और नाम में कोई वो नहीं किया। तो हम जब जितने यहां बैठे हैं, अगर हरिनाम में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हरिनाम में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में ही अवतार लिए। ये उस समय की घटना याद करिए जब जगाई मधाई से आमना सामना हुआ था नित्यानंद प्रभु से, उनकी टीम से, तो उसको पत्थर मार दिया, राइट, नित्यानंद प्रभु को, उनको सर में लगा, वो गिर गए, खून निकलने लगा। ये बात जैसे चैतन्य महाप्रभु को बताई गई, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या कहा, सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन। उस समय नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, अरे प्रभु आप अस्त्र की क्या जरूरत है, कि आप तो इस कलयुग में हरिनाम के द्वारा इन जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं। यही कारण हरिनाम से इनका उद्धार करने के लिए, तो इनको माफ कर दो। ये बात जैसे जगह मुदा ने सुनी, उनका हृदय पिघल गया कि जिसको हमने पत्थर मारा वो हमारे मृत्यु से बचा रहा है, सुदर्शन चक्र से बचा रहा है। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और आजकल अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो सहनशीलता कैसी होनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु से सीखना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, भक्तों में हो जाता है, छोटी छोटी होता नहीं होता, घर में भी हो जाता है, होता नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, कि हमारे जो कांग्रेगेशन ड्यूटी है उनमें कभी झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी किसी से हो जाता है, तो जब हम लोग जाते होते हैं कि आप लोग कैसे, ये आदमी इतना चांटिंग करता है लेकिन बड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, क्या शिक्षा देते हैं? अर्थात अगर आप चांटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं, गीता का उपदेश करते हैं, तिलक लगाते हैं, और झगड़ा करते हुए कोई देख लेगा तो आपको अच्छा नहीं मानेगा। नेचर ऐसा है, सच्चाई नहीं, कि लोगों की नज़र में है कि जो साधु होता है, भक्त होता है, उसको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं करना चाहिए, ऐसी सच्चाई भी। ये हमारे गुरु महाराज जी सीखे। पेशेंस किसे कहते हैं? हमें दूसरा दूर जाने करते हैं, अपने गुरु महाराज सीखे। गुरु महाराज के पास जब वो आते हैं, इतना टेंशन लेकर पता नहीं क्या क्या प्लान लेके आते हैं, है ना? अब महाराज के पास आते आते ठंडे हो जाते हैं। सच है कि नहीं? सच। हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर, बड़ा राइट राइट राइट। जैसे गुरु महाराज जी के सामने आते आते क्या होते, ठंडे हो जाते। अब महाराज बड़े मुस्कुराते साथ धीरे धीरे समझाते थे, करते नहीं करते। ये सीखना चाहिए, पेशेंस। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी, और यही शिक्षा जानते हैं हम लोग, तो इस कान के रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी, हम भक्तों को इस बहुत जरूरी है। अगला कितना भी गाली दे, कुछ भी करे, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, समझाने का प्रयास कर। इससे क्या होगा कि बाहर के लोग जो देखते हैं वो कहते हैं ये साधु आदमी, लोग उसको बुरा मानेंगे, लेकिन आप भी चिट फाट टैट में लग गए तो वो जानते गए भी साधु ऐसे है। समाज क्या दिखता है इस चीज, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी। ये शिष्टाचार कहाँ कहाँ सिखाया जाता है आप बताइए, बाहर की दुनिया में भी ये चीज सिखाई जाती है, कहाँ कहाँ सिखाई जाती है बताइए। एयरपोर्ट, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो जो एयर होस्टेस होती हैं उनको यही सिखाया जाता है। अगला कितना भी चिल्लाए कल तक तुम्हें मुस्कुराना ही, मीठे ढंग से ही समझाना है, राइट, क्योंकि दे आर माई कस्टमर। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे फ्लाइट में नहीं आएंगे, घाटा होगा। वो इसके लिए शिक्षा देते हैं, इसी का उनको पैसा मिलता है। ये आप जान लीजिए, 5-star होटल जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, स्टाफ होता है, उनको भी शिक्षा दी जाती है कि कस्टमर कितना भी चेक कर चला है, हमारा क्या जाता है सब करने से। ये डिसिप्लिन आप चाहे वहां पे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, यही मिलता है। तो हम वैष्णव हैं, हमें भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो उनमें हमारे में क्या अंतर है। तो सिर्फ तिलक लगाने से, घंटी माला पहनने से हमें इन्हें होना चाहिए, बस हम भक्त होने। आपका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो आपको हाईलाइट करेगा, वो बताएगा। इससे हम भक्तों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए इन सब चीजों, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे जब बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारा व्यवहार बहुत ही सुंदर और विनम्र होना चाहिए, विनम्रता झलकनी चाहिए, बहुत आवश्यक। अये चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने हमें यही सिखाया, कहो उनको पत्थर मार दिया, खून निकलने लगा, और उसके बारे में पत्थर मारने वाले क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ये शिक्षा किसके लिए दिया बताए, हमारे लिए, हमारे जो अगली पीढ़ी आएगी उसको इसे शिक्षा लेना है, भगवान की जितनी लीलाएं हैं, भगवान राम भी धरती पर आए तो उन्होंने अपने आचरण से क्या किया, शिक्षा दिया। आप खुद सोचिए कि जिसकी पत्नी को हर ले जाए, है ना, भगवान ने उसको गाली तक नहीं दिया। आप सोचिए किसी की पत्नी हर ले जाए तो हम FIR करेंगे, गाली गलौज के, पता चल जाए उसका घर फूंक दें, बहुत कुछ करेंगे, राइट, तुरंत रेड करेंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या किया बताइए, शिक्षा दिया आचरण से। उनको सब पता था, फिर भी ढूंढ रहे हैं पर्वतों से, पौधों से, जो मिल रहा है फ्लावर्स उससे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को आपने देखा, तो ये क्या सिखाता है। आजकल हो जाए अच्छा हुआ भला चली गई वो, दूसरा कर लेंगे। आजकल स्थिति बहुत भयानक है, लोग शादी करने से पहले, है ना, आजकल स्थिति इतनी खराब हो गई शादी की कि 3 महीने टिक जाए बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद देखा है, हम तो पंजाबी बाग की ही घटना बता देते, आपको मालूम ही नहीं, इसी मंदिर में एक लड़का आता था, प्रात चांटिंग करता था, और जो लड़की थी वही पंजाबी बाग में रहती थी, अब उसकी चांटिंग का असर से, है ना, सोची बड़ी भक्त, बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि उसका पूरा परिवार भक्त है, वो शादी कर ली बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायरी किए। और जब शादी कर लिए, शादी होने की बात असलियत पता चलता है, लड़का बिल्कुल निकम्मा था, कुछ नहीं करता था, बस उसके पिताजी की एक दुकान थी, वो जाकर कभी बैठता था कभी नहीं बैठता था, और 15 दिन के अंदर मारपीट शुरू कर दी, और 3 महीने के अंदर क्या हो गया, तलाक हो गया। मैं आपके यहाँ घटना बता रहा, कितना धोखा है। हमारे मंदिर में एक शादी हो रही थी, पता नहीं किस बात पे लेकर जयमाला के समय लड़का लड़की में झगड़ा हो गया किसी बात पे, उसी समय माला तोड़ करके उसी समय टूट गई, अपने राधा पार्षदी मंत्र। अब आप क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं, जब कितना ठोंक बजा के तब शादी करते। पहले क्या था, दादा परदादा के जमाने में जिसके साथ कर दिया कर दिया, जीवन भर के लिए, वो चाहे कानी हो, कोचर, लूली हो, लंगड़ी हो, काली हो, पीली से कुल है। अब तो लड़के लड़कियां पहले से मिल लेते हैं, जिसे लिविंग रिलेशन कहते हैं, और तब भी नहीं पड़ते रहे। अब खुद सोचो हम कहां जा रहे हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता कहां जा रही है। तो बड़ा धोखा है संसार में। तो चांटिंग जो कर रहा है ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा साधु है, उसके आचरण से, व्यवहार से समझना पड़ेगा। आप खुद सोचिए हनुमान जी भगवान के कितने प्रिय भक्त हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो संजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया, और रावण ने क्या किया कि कालनेमिक बड़ा भयानक राक्षस था और भेष बदलने में मास्टर था, उसने कहा कि इस हनुमान को, बंदर को तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय हो जाए उसके बाद तक, क्योंकि जो जड़ी बूटी थी सूर्योदय से पहले पहुंचनी थी तभी वो काम करती। इसने क्या किया कि जिस मार्ग से हनुमान जी उड़ रहे थे उसी पर्वत गुफा में उसने क्या किया, साधु का वेश बना लिया। किसका वेश, साधु का, और इतना सुंदर आसन बना दिया, सब माया भी बड़ा रमणीक आसन, कि हनुमान जी प्रभावित हो गए माया जाल से। आप खुद सोचे कि अगर हनुमान जी जैसे लोग भ्रमित हो सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली है। इस शिक्षा है, हनुमान जी से महान भक्त अगर भ्रमित हो सकते हैं माया से, माया जाल, तो हम लोग किस खेत की मूली, हनुमान जी फिर लैंड करे नीचे आ गए और राम राम का जब कर जानता था कि राम के भक्त हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम कर आंख मूंद करके आंख खोल नहीं रहता सब देख रहा था। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, उसको पता था सब पहले से था कि बच्चा मैं समझ गया तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ मैं यहीं से देख रहा हूँ राम रो रहे हैं लक्ष्मण मूर्छित है, तो कहीं तो बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा बैठे बैठे सब जानकारी रखता है। देखा कैसे ये मायावी लोग प्रभावित करते हैं, सब प्रभावित कर। हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए कि बच्चा मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं, तुम नहा करके आ जाओ और तब हम तुम्हें क्या करेंगे दीक्षा देंगे। और उसके माज इतना प्रभावित हो गए कि भाई आप कोई बताए कि आपके बारे से डिटेल बता दे तो आप साधु से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे कितने फर्जी बैठे हुए साधु घूम रहे हैं। तो हनुमान जी कहे कि ठीक है। अब हनुमान जी स्नान करने गए सरोवर में, जब गए तो वहां एक मकड़ी थी, वो जैसे नहाने लगे मकड़ी आई उनका पैर खींचने लगी, उन्होंने जद का एक झटका मारा तो मकड़ी जैसे गिरी, उसमें से अप्सरा निकल करके गई है। और उसने बताया कि अरे हनुमान जी ये साधु नहीं है, ये कोई साधु सन्यासी मुनि नहीं है, ये तो भयानक राक्षस कालिनेमी है, ये तो आपका रास्ता रोकने के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए ये मायाजाल फैलाया हुआ। तब हनुमान जी की आंख खुली, हनुमान जी की अच्छा ये बात है, अब हनुमान जी समझ गए क्या करना है। अब हनुमान जी आ गए उसके सामने हाथ जोड़ के बड़े देखो विनम्रता से, इन्हें के पहुंचते ही घुसा माना ऐसा कुछ नहीं, पेशेंस पेशेंस में सीखना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे पता चल जाए अब मानस हमारे बारे में उस भक्त ने ऐसा कहा अभी बताता हूं है नहीं, लेकिन हनुमान जी जब पता चला तो इलाही बोला कि अभी बताता हूं राइट। यही हम भक्तों को सीखना चाहिए, जिससे हनुमान जी क्या दास श्रोमणी है, हम लोग अपने आकर दास लिखाते हैं ना, तो हनुमान जी भगवान के दास है, दास की श्रवण है, तो हमें हम भक्तों को हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि कब कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने पेशेंस रखा और किससे काम किया दिमाग से, हमारे गुरु महाराज भी यही करते हैं, कितना कितना कुछ भी महाराज को कुछ कहता भी है तो महाराज बड़े ठंडे दिमाग से सब सहन कर जाते हैं राइट, लेकिन ऐसा उसको ठिकाने लगा देते उस पता भी नहीं चलेगा क्या करते है ना। यही ये बहुत रहस्य है कैसे डील करना चाहिए ये आना चाहिए ये चीज होता है। तो हनुमान जी नहीं कहा, अब हनुमान जी से सब पता है, बच्चा आ गए हाँ गुरु जी आ गए है, तो कहे अब बैठ जाओ और दीक्षा लो। कहे कि हे गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा, हम पहले दीक्षा देंगे आपको दीक्षा बाद में लेंगे। तो वो इसलिए खुश हो गया है ना कि देखो अच्छा से शिमला जो पहले दीक्षा देता है बाद में दीक्षा लेता है, बाकी कर शिष्य कैसे होते पहले दीक्षा ले लेते हैं तब दीक्षा देते हैं, कहते पहुंचा हुआ शिष्य दीक्षा पहले दे रहा ऐसा शिष्य मिला जो पहले भिक्षा दे रहा बाद भिक्षा ले रहा है। तो कहे ठीक है फिर भिक्षा दो। अब हनुमान जी ने क्या किया, वो आंख तो मूंद के रखा ही था, कहे भिक्षा दो, फिर हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाई, देखा हनुमान जी पूंछ जो है कई जगह बढ़ाई, यहां भी बढ़ाई, बढ़ा करके उनको लपेटे, कहे बच्चा क्या कर रहे हो, कहे भिक्षा दे रहा, के कैसे बिच्छा है जकड़ के यही हमारी बिच्छा है करके कस के अब तीन चार बस पटक के खत्म कर दिया। जब मर गया तब देखा तो भयानक राक्षस जितना रमणीक स्थान सब गायब हो गया था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि साधुओं से भी कह सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, आप नवम स्कंद पढ़िए जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज परिचित महाराज को सुनाते हैं। वहां पे प्रभुपाद जी वो दृश्य जब आता है जब रावण जो है सीता को हरण करने के लिए ये सोच में पड़ा है कि मैं कौन सा रूप धारण करूं, तो सारा कुछ प्लान करने के बाद सब प्लान फेल हो रहा है। तब उसने क्या किया, कह के हम साधु का वेश धारण करें कि जो स्त्रियां होती हैं वो साधुओं से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती है। जान जी स्त्रियों में खासियत होती कि उनका हृदय निर्मल होता है, उनका हृदय सॉफ्ट होता है, भगवान के प्रति नेचुरल उनके हृदय में क्या होती है, श्रद्धा होती है। इसलिए कहीं कथा भागवत मंदिर कुछ हो सब ज्यादा भीड़ किसकी होती है, स्त्रियों की। ये नेचुरल है, आदमी का हृदय कठोर होता है, जल्दी भक्ति भक्ति नहीं लगता है ना, ऐसा होता है, उसको तो बड़ा करना पड़ता तब जाकर पकड़ में आता है। लेकिन स्त्रियां नेचुरल होता है, थोड़ा सा अगर आप मांस दिए तो भक्त बन जाएंगे, ऐसा होता है। तो वो सोचा कि बस साधु का ही वेश में सीता को हम हरण कर सकते हैं, तो साधु का वेश धारण किया। अब वही हुआ जो रावण चाहता था, क्योंकि साधु द्वार पे आ जाए तो मुनि आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, सिद्धांत सोच चला रहा है। और वही चीज हुआ, उसने कहा लेकिन सीता जी जब बाहर निकली और वो अपना सद्वपन खत्म करके अपने रंग में आ गया, असली रंग में आ गया। वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य रखना चाहिए कि इस कलयुग में ऐसे कितने कपड़ी साधु जो है घर घर में आपको मिलेंगे, पड़े हैं। इसलिए साधुओं से भी क्या करना चाहिए, सावधान होना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत कम है साधन। और आज ऐसे कितने साधु जी हैं, बाबा जी लोग हैं जो ऐसा कांड करके जेल के अंदर जा रहे हैं, कुछ तो चले भी गए। तो इसलिए हम भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमारा आचरण सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। हम जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, नहीं कि बाहर से हम साधु देखें अंदर से अलग रहें, और ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत सावधान से जिस दिन ये चीजें आप अपनाएंगे आप जो भी चाहेंगे भगवान पूरा करेंगे। तो वही यहाँ पे बता रहे कि जो हरिनाम संकीर्तन है, चेतन महाप्रभु इस धरती पर आए हरिनाम के द्वारा हम सबको क्या किया, यही इस कलयुग का क्या है, धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के बावजूद भी तो प्रभु का दूर लोग कहते हैं कोई व्यक्ति अपन निजी धर्म, तो ये धूर्त लोग हैं जो अपना मनगढ़ंत आश्रम खोल देते हैं, फिलासफी सिद्धांत शुरू कर देते हैं, ये गलत है। हमें उसी धर्म को अपनाना है जिसके प्रतिष्ठापन कौन किया है, भगवान ने किया है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, प्रभुपाद जी ने यही लेसन भागवतों का कि धर्म की स्थापना कौन करता है, सिर्फ कृष्ण करते हैं, सिर्फ भगवान इस धरती पर आकर के धर्म का स्थापना। उसी धर्म को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और यही कृष्ण राधा के साथ ईगल अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, किसके हरिनाम के द्वारा सबको उतारने के लिए। तो चेतन महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमि ते हैल जन्मजार जन्म सार्थक करि कर परोपकार। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें, भक्ति करें भगवान की, और दूसरों को अपना संग दे करके उसको क्या करें, उसका भी क्या करें, कल्याण करें। तो संग देने का सबसे बड़ा प्रभावशाली तरीका है जो इस समय दिसंबर के महीने में चल रहा है, क्या, भगवद गीता मैराथन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर हाथ में भगवद गीता एजिटेड होनी चाहिए, कि यही वो भगवद गीता है जो पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। इस गीता ऐसी चीज को पढ़ करके लोग कितने भक्त बन रहे हैं, कितने लोग बदल रहे हैं। बाकी कोई गीता पढ़कर कोई भक्त नहीं बन रहा, प्रामाणिक है। तो हम सबका कर्तव्य है कि ये जो एक महीने के लिए प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे कि हमारे भक्त जो है प्रसाद लेकर के सड़क पे दिखें, घर घर जाएं और गीता पहुंचाएं, कि उसे उसका क्या होगा, उद्धार होगा। एक कितना प्रभावशाली है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब राधा राधिका रमन जी रोड नंबर 63 में थे, तो मैं नया प्रेसिडेंट बन करके आया था, तो सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक फोन आया, कहां से, कृष्ण नगर से। कहां से आया, कृष्ण नगर एक जगह है जमुना के आसपास, तो कृष्ण नगर से वो फोन आया। तो कहा कि आप इस कान से बोल रहे हैं, मैं इस कान से ही बोल रहा हूं। उसने पहले मिलाया था संत नगर मंदिर, लेकिन उसमें मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लैंडलाइन काम नहीं करते थे, लेकिन हमारा पंजाबी बाग चल रहा था फोन, तब तो उन्हें पंजाबी बाग मंदिर का फोन लगाया। तो कहे कि मैं इस कान जुड़ना चाहता हूँ, तो हम कहा इस कान जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपना एड्रेस दीजिए, हम आपसे मिल करके जोड़ते हैं इस कान से, तो कि आप अभी आ सकते हैं। हम कहा पंजाबी बाग से कृष्णगढ़ का 1 घंटा लगेगा, हम आ जाएंगे, कि आप आ जाइए। तो हम लोग तो तैयार ही रहते हैं, कोई बुलाए तो सही। अब हमने ओम प्रकाश हमारा ड्राइवर था लेकर के गए, कृष्ण नगर पहुंचे तो बहुत बड़ी दुकान थी उनकी, गए बहुत जेंटलमैन आदमी, तो हरे कृष्ण वाला प्रसाद सा दिया। ये बहुत जरूरी, प्रचारकों को प्रसाद अवश्य रखना चाहिए, कि प्रसाद ही असर करता है। अब प्रसाद था में पकड़ाना चाहिए डिब्बा, उसको खिलाना चाहिए, जो खाएगा तब तो हमारे सर बोलेगा, कि जिसकी खाए उसकी गाय, जो जिसका दिया वो खाता है उसके अनुसार बोलने लगता है। तो आपको प्रसाद खिलाना चाहिए, तभी तो प्रसाद अपना असर दिखाएगा। अगर आप डिब्बा पकड़ा दिया और डिब्बा रख कर फिर बात करेगा, फिर असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ होती, तो हमने प्रसाद खिलाया, बहुत खुश हुआ। तब हम पूछा कि आपका फोन आया था, कि हाँ। अब उससे हम कहा आपको फोन कैसे मिला, नंबर हम कहा किसी ने दिया होगा। तो कहे कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं नोएडा में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने हमें एक मैगजीन दिया, वो मैगजीन दिखाया और उसका क्या नाम है, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन पुराने जमाने की भगवत दर्शन, और उसको भगवत दर्शन कहीं हमारे रिश्तेदार को मिला था, वृंदावन गया था, तो उन्होंने 2 रुपये 3 रुपये खरीद लिया था, कि लोग वहाँ बांट रहे थे, तो कहे मान लिया। लेकिन उनका इंटरेस्ट ज़्यादा भक्ति नहीं तो रखे थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा भक्ति में रहता है, तो जब हम मिलने गए तो उन्होंने ये भगवत दर्शन दे दिया। और जब मैं आया लेकर के थे तो पढ़ा, और कहे कि हम पूरा पढ़ गए। अब पढ़ने के बाद में इतना अच्छा लगा कि हम लाद देख लेंगे कि इतनी बड़ी अच्छी संस्था है, काम लेकर के हम दिल्ली में उसमें एड्रेस लिखा रहता ना भगवत दर्शन, तो कहे फोन ना हम आ गए। देखो कैसे एक भगवत दर्शन 2 रुपये की इतने बड़े आदमी से मिलवा दिया। तो कहे कैसे, हमका दो तरीका है इस कान जोड़ने का। एक तो जो हमारा तरीका है, इसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा, आप अपने आप सरेंडर कर दो, दुकान छोड़ कर जुड़ जाओ, साधु बन जाओ, ऐसे बोला। नहीं तो दूसरा तरीका है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, है ना, आप हम आप हमारे इस कान के आजीवन सदस्य बन जाइए, थोड़ा सा धन देना पड़ता है और हमारे इस कान के आजीवन सदस्य बन जाएंगे, कि वो हमें सूट करेगा। हम तो जानते थे बनिया आदमी वही सूट करेगा इसको, कौन दुकान छोड़ कर साधु बनेगा, है ना। तो कही मैं भी बन सकता हूँ, कहा तत्काल बन सकते हैं। मैंने फार्म निकाला ब्रीफ केस में से, फार्मा उधर जो 10,000 कितना था, 11,000 से जो कुछ था, करके फार्म भर दिया, अब मेंबर बन गया, चेक निकाल दिया, बड़ा खुश गया। तो ओम प्रकाश मैंने बोला गाड़ी में से, हम लोग क्या करते हैं सब तैयार रख के रखते हैं, तो बुक सेट वगैरह हम दिया उसको, बड़ा खुश हो गया, फोटो मिल गई, राधा राज कारमन जी का है ना, जब माला मिल गया, किताब मिल गई, बड़ा खुश हो गया, इतना सामान दिया, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा चेक दिया, उसने एक चेक दिया, इतना बड़ा सामान इतना दिखने लगा, लेकिन चेक में जो पैसा है कम नहीं था, 11,000 था नहीं। वो बहुत खुश हो गया। हम गए तो कहे स्वामी जी ऐसा करे, कल 11 बजे आप फिर आए हमारे। हम फिर दूसरे दिन 11 बजे ठीक पहुंच गए, तो जान के आप मेरे साथ चले, तो एक मार्केट में ले गया, 3 आदमी को तुरंत मेंबर बना दिया। कही हाँ, तो 2,002 रुपए की भगवत दर्शन 5 लोगों को मेंबर बना दिया, कितना हजार हो गया, 55,000। 2,002 रुपए की मैगजीन कितना दिलवा दिया, 55,000 दिलवा दिया 2 दिन के अंदर। सोचना कितना प्रभावशाली प्रचार, अगर वो मैगजीन नहीं मिली होती तो कैसे ये जुड़ते और भक्त बनते। और आप जानते हैं उसमें से एक परिवार दीक्षा ले लिया, मतलब सब अपने गुरु भाई बन गए। प्रचार का एक असर पड़ता है, इसीलिए प्रभुपाद चाहते कि भगवत दर्शन, भगवत गीता, कोई भी किताब प्रभुपाद जी की घर तक पहुंचे, वो कब विस्फोट कर देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। अब घर घर जा करके मैराथन का समय है, हमें ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद चाहते थे कि मैराथन का मतलब है कि कम सोना, कम खाना, कम बोलना, ज्यादा करना, जस्ट डबल इट। जितनी गीता है, किसे जब बीबीटी छापती है गीता को, तो हमारा कर्तव्य क्या है, उसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग भगवत गीता का वितरण करेंगे तो प्रभुपाद जी के प्रिय बनेंगे, और प्रभुपाद जी जो प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी आप प्रिय बन जाएंगे। और गीता भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस दिव्य संदेश को दूसरों में वितरित करता है वो मुझे सब ज्यादा प्रिय होता है, ऐसा न कोई प्रिय होता न होगा भविष्य। तो अगर आप प्रिय बनना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, प्रभुपाद जी ग्रंथ है उसको क्या करे, बेचिए। कि प्रभुपाद जी फिल्म देने की बात नहीं कही, प्रभुपाद खुद बेचते थे छाप करके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में समस्या है कि किसी को फ्री दे दो उसका वैल्यू नहीं करता, जब पैसा देख लेता है तो उसका वो कीमत करता है। इसीलिए आप लोग वितरण में लगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या, एक प्रश्न बोलिए। आवाज ठीक रही ना, हम आवाज मन ठीक काम कर गया ना, काम मैं बड़े टेक्निकली बोला, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो ये आप जोर हम बोले।
हरे कृष्ण भोजी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। भोजी मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमने सुना कि भक्तों के बीच में मीमना बन के रहना चाहिए और बाहर जाना शेर बन के रहना चाहिए, और आप कहते हैं कि मतलब धैर्य रखो, आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको मतलब सहन करें, कैसे समझे इसको।
एक साधु था, वो नदी के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक बिच्छू जो है वो बेचारा बहा जा रहा था, वो छटपटा रहा था, बचना चाहता था, लेकिन वो पानी में फंस चुका था। तो वो साधु ने क्या किया, अपने हाथ से बिच्छू को निकालने लगा, बिच्छू उसको डंक मार रहा है, तो दूसरा जो उसके साथ था, अरे कहे कि ये तो बिच्छू है काट लेगा इसका, तो साधु ने कहा कि हम साधु हैं, हमारा कर्तव्य है इसकी सुरक्षा करना, क्योंकि अगर दुष्ट अपनी दुष्टाई नहीं छोड़ा है तो हमें भी अपनी संताई नहीं छोड़ना, हमें उसके जैसा नहीं बना, वो दुष्ट है वो अपना काम करे, हम साधु हैं अपना काम करेंगे, अब समझ गए ना, हमें करना चाहिए, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी चेस्टाइज करना पड़ता है, ये हमें किसे सीखना पड़ेगा, हनुमान जी से। इसीलिए उपदेशामृत अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि काम क्रोध वाचो वेगम मनुष्य क्रोध जीवा वेग उदर प्रस्त, कि जो क्रोध का वेग को कंट्रोल करने की जो कला है किसे सीखना चाहिए, हनुमान जी सीखना चाहिए।
अगर कोई कोई हमारे साथ धोखा करता है तो,
अगर धोखा करता है तो उसका इलाज दूसरे से करवाए, आप सुनिएगा ना, क्योंकि धोखेबाज घूम रहे हैं और दिल्ली तो बदनाम है। यहां जितना लोग झूठ बोलते हैं, यहां तो आप किसी को पैसा दे दो वो डूबा, वो मिलने वाला नहीं है, जानने चाहिए सच्चाई नहीं सच्चाई।
बिल्कुल,
आप जब मांगेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम भीख मांग रहे हैं अपना ही पैसा, जब उसको लेना होगा तो बड़े विनर से एक बार दे दिया, आप देख के देखिए सच्चाई नहीं सच्चाई। क्योंकि यहां दिखावा शोशोबाजी झूठ बहुत ज्यादा है। दिल्ली सर, दिल्ली बदनाम है। अभी हम गुजरात में थे, वहां गुजराती बहुत भाई आए थे, बड़े बड़े बिजनेस सब बताते हैं कि हम तो दिल्ली वालों से, क्योंकि यहाँ पंजाबी सेठ है ना, पंजाबी में होता क्या दिखावा बहुत होता, वो गलती करेगा गाली भी देगा आपको। आप जब गाड़ी से गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, गलती उसी की रहेगी, लेकिन जब सरदार उतरेंगे तो आप ही गाली देना शुरू, माना पीना शुरू कर, बड़ा ऐसा नेचर है। आप क्या कर सकते तो इस संसार जीवन इसे बहुत चतुराई से दिमाग से काम करना
चाहिए। उस समय भक्त को क्या करना चाहिए?
भक्त को वही करना चाहिए जिस तरह से वो अपना काम निकल जाए, नहीं भगवान पे छोड़ दो। आप क्या कर सकते, आप गाली गलौज कर नहीं सकते, लेकिन हमें कभी कभी टीणा होना चाहिए। ये भगवान ने शिक्षा दी है। भगवान राम ने एक बात कही है, जब वो समुद्र से 3 दिन तक रास्ता मांगे, जब वो नहीं सुना तब भगवान का भय बिन हो न प्रेत, वहां पर दन का विधान है। तो साम दाम दन और भेद एक चारों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वक्त पे करना चाहिए, सही वक्त पे, वो गलत नहीं है। इसे भगवान राम भगवान कृष्ण इन दोनों ने साम दाम दन और भेद को लागू किया है पब्लिक की सुरक्षा करने के लिए, समाज सेवा के लिए। तो कहना अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। भगवान राम का उद्देश्य अलग था, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। कृष्ण का उद्देश्य अलग था। आजकल लोग तो स्वार्थी अपने लिए अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के परिवर्तन के लिए किया, ये ध्यान रखना चाहिए, जिसे पूरे समाज का कल्याण। ये भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। हाँ, इसीलिए समय टाइट होना चाहिए। लेकिन अगर आप उपदेशामृत पढ़े प्रभुपाद, देखो होता क्या है कि अगर आंख दिखान, देखो क्रोध को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैटेगरीज है, इन्हें छोटी छोटी बात पे आप चढ़ जाओ, मारपीट शुरू करो जैसे आजकल हो रहा है, नहीं। अगर आंख दिखाने से ही काम हो जाए तो आंख दिखाओ, है ना, थोड़ा डांटो, डॉक्टर से काम चल जाए उससे कर, जब नहीं होता फिर जो करना करो, लेकिन हमें कैटेगराइज करना चाहिए। आजकल क्या रखे, छोटी छोटी बात में मारपीट शुरू हो जाती, वो गलत है। हाउ टू कंट्रोल, बताया गया है कि एंगर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है। ए प्रॉब्लम है, यू कांट कंट्रोल द एंगर, यू कैन कन्वर्ट द एंगर इन राइट वे। एक कला हनुमान जी सीखनी चाहिए। हनुमान जी अशोक वृक्ष के पे बैठे थे, रावण सीता जी को गालियां दे रहा था, क्या क्या बातें कर रहा था, लेकिन हनुमान जी कैसे, गुस्सा बहुत था लेकिन चुप, कि उसमें सही समय नहीं था गुस्सा करने का, पी गए वो, लेकिन जैसे चल गया पूरा अशोक वाटिका उजाड़ करके लगा अंका में लगा दी। इसे कहते हैं कैसे क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए और चतुराई से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हनुमान जी सीखना चाहिए। बनाता है, हाँ उसको डील करना आना चाहिए, हाँ अपनी सुरक्षा रखना। जैसे एक साधु ने सांप को बोल दिया, अब सांप का, सांप से बोला तू भैया किसी पर सांप मत काटा, और सांप ने क्या किया, सब काटने बंद कर दिया, तो सारे बच्चे उसको मारना अधमरा कर दिया सब। अब सांप दौड़ कर स्वामी जी के पास आया, तो स्वामी जी ने बोला था किसी काटना मत, तो हमने काटना छोड़ दिया, मेरी मैं तो मरने के कागार पर हूँ। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि मैंने तुमको ये थोड़ी मना किया तुम डराओ मत, तो इसीलिए अब सांप क्या करता है, डराता जाता है काटता कम, फुफकारने में क्या जाता है। आप सुनिए,